मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। साल 2015 के अक्टूबर का आज पहला दिन है। आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में प्यारे साथियों मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एकेडमी की एक तो 15 दिन की क्लासेस अभी अक्टूबर में होने वाली हैं और इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी वो फरवरी 2016 में होने वाली है। तो जो फरवरी की जो क्लासेस होने वाली हैं उनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो फरवरी के लिए 4 साथियों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं कल। इन चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इन साथियों के नाम हैं नीतू कुमारी चंडीगढ़ से, शुभांकर मंडल हुबली वेस्ट बंगाल से, अभिषेक उपाध्याय मुंबई से और आशीष कुमार मिश्रा इलाहाबाद से। तो नीतू, शुभांकर, अभिषेक और आशीष, आप चारों साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। मित्रों, आज अक्टूबर की शुरुआत हुई है और डेफिनेटली इस अक्टूबर के महीने का नाम जुबान पर आते ही मेरे आंखों के सामने जो 25 अक्टूबर से जो क्लास का जो सीन बनेगा, जिसके मेरे सामने एक पूरे के पूरे हिंदुस्तान के इतने सारे यंग जो स्टूडेंट्स होंगे उनका समूह होगा और हम लोग आपस में सिविल सर्विस के बारे में कैसे हम तैयारी करें, क्या हमारी टेक्निक हो, क्या हमारी शंकाएं हैं, कैसे हम मैनेज करें, कैसे अपने व्यक्तित्व को विकसित करें, कैसे अपने दिमाग को मजबूत बनाएं, ढेर सारे इश्यूज पर हम लोग बातें करेंगे। मित्रों, बहुत उत्सुकता से मैं उस तारीख की प्रतीक्षा कर रहा हूं जबकि एक 15 दिन का एक जबरदस्त ज्ञान का मेला यहां लगेगा और हम सब इंटरैक्शन के जरिए एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। तो मित्रों, आप सब की प्रतीक्षा कर रही है एकेडमी और आप सबका भी हार्दिक रूप से स्वागत है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जो मेरे लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज हुआ करता है। फ्रेंड्स, कल जो सरदार भगत सिंह के बारे में जो मैंने आपको 2-3 छोटे छोटे जो उनके उनके जीवन से जुड़े हुए ऐसे प्रसंग हैं जो उनके दिमाग की मजबूती को हमारे सामने बड़ी सुदृढ़ता के साथ प्रस्तुत करते हैं, वो घटनाएं मैंने आप लोगों को सुनाई थी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इस पर बहुत अच्छी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आप लोगों ने मेल लिखे हैं कि किस तरह से आप सबको एक प्रेरणा मिली है। दोस्तों, इसी के साथ एक बात और जोड़ करके देखें, सरदार भगत सिंह की तस्वीर तो आप लोगों ने देखी ही होगी, एक बहुत उनकी प्यारी तस्वीर है और जो बड़ी पॉपुलर भी है कि वो एक खाट पर बैठे हुए हैं, अपने पैर फैलाए हुए, पैर नीचे हैं उनके, खाट के नीचे हैं उनके जो पैर हैं वो घुटनों तक उघड़े हुए हैं, मतलब वो शायद धोती या कुछ लुंगी पहने हुए हैं। तो खासकर मैं इस दृश्य का वर्णन इसलिए कर रहा हूं, उसमें आपको भगत सिंह बिल्कुल दुबले पतले से लड़के दिखाई देते हैं और थे भी वे दुबले पतले से थे। आश्चर्य होता है कि इस दुबले पतले शरीर में इतनी ताकत कहां से आ गई, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में तो यही होता है ना कि अगर वो बहुत ताकतवर है, अगर वो बहुत वीर है, बहादुर है, तो शरीर से भी बिल्कुल वैसा ही होगा, ऐसा हमारे दिमाग में एक इंप्रेशन सा बना हुआ है। दोस्तों, लेकिन जब आप सरदार भगत सिंह की तस्वीर देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो तो काफी दुबले पतले से उसमें दिखाई देते हैं। तो फिर ये जो ताकत थी, ये जो साहस था, और उनकी ताकत इतनी अधिक थी, आप सोचिए कि उस समय के अंग्रेज थर्राते थे, डरते थे। गांधी जी को देख लीजिए, गांधी जी आपको क्या लगते हैं, बिल्कुल दुबले पतले से, वो तो बनियान भी नहीं पहनते थे और आप देखिए शरीर उनका बिल्कुल हड्डियों का ढांचा सा दिखाई देता है, हड्डियां उभरी हुई दिखाई देती हैं, पतले पतले से पैर, ये बात अलग है कि वो पैर चलने में बहुत तेज थे, पतला सा, दुबला पतला सा शरीर, बूढ़ा भी शरीर, लेकिन उनके नाम से ब्रिटिश साम्राज्य थर्राता था। मित्रों, यहां सोचने की बहुत छोटी सी बात है कि फिर ये थर्राहट, ये भय किस बात का है, किस बात से वो डर रहे हैं। मित्रों, ये दिमाग की ताकत से डर रहे हैं। वो जानते हैं कि गांधी जी को किसी भी बात के लिए झुका पाना उतना आसान नहीं है, ये बात नहीं कि आप उनको बिल कोई प्रलोभन दे करके उनको अपने वश में कर लें, सम्मोहित कर लें या अपनी बात आसानी से मनवा लें। और जब लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आए थे, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस देश को आजाद कीजिए, तो मित्रों समय लॉर्ड माउंटबेटन के संस्मरण है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, एक आत्मस्वीकृति है उनकी कि मुझे सबसे ज्यादा जो डर लगता है बातचीत करने में वो गांधी से लगता है, और बाकी से वो बातचीत करने में इजी थे। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कम शक्तिशाली नहीं थे, हमारे देश के आयरन मैन थे, लेकिन वो फिर भी गांधी लॉर्ड माउंटबेटन उनके साथ थोड़ी सी सहजता महसूस करते थे। लेकिन गांधी जी के साथ मतलब लॉर्ड माउंटबेटन एक तरह से कह लीजिए यंग जैसे थे, और गांधी जी तो उस समय काफी उम्र के हो गए थे, 75 पार कर चुके थे। तो दोस्तों याद रखिए, ये जो ताकत आती है ये दिमाग की ताकत है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा दिमाग हमारे साथ खेल खेलता रहता है और हम समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाते क्या, हम तो उस खेल में शामिल हो जाते हैं, समझना तो एक दूर की बात है, हम उस खेल के हिस्से बन जाते हैं, क्योंकि ये जो खेल होता है ये हमें सूट करता है, हमें अच्छा लगता है। और सूट क्यों करता है, दिमाग के द्वारा खेले जाने वाला खेल हमें पसंद क्यों आता है, क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं या जो हम अपने दिमाग को मजबूत रख करके जिस संकट से हम जूझते, जिस संघर्ष से हम गुजरते, अब ये हमारा दिमाग हमें उस संघर्ष से बचा रहा है, उधर जाने से रोक रहा है। तब हमें लगता है कि यार हम इस मुसीबत से बच जाएंगे, अभी तो बचो, बाद में फिर देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों हम ये भूल जाते हैं कि इस संघर्ष से बचना, इस संकट से बचना, ये एक प्रकार का हम अपने प्रति किया गया छलावा ही कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। संघर्ष टला है, खत्म नहीं हुआ है। टलने और खत्म होने में बहुत बड़ा फर्क है। टलने का मतलब है वो फिर आएगा, खत्म होने का तो मतलब है कि समाप्त हो गया। अगर हम अभी इससे जूझ लेते तो वो समाप्त हो जाता। मान लीजिए कि अभी जैसे अक्टूबर की क्लासेस हो रही हैं, अगर आपको सच में सिविल सर्विस की क्लासेस करनी है, करनी है तो, नहीं करनी है तो बात ही खत्म हो गई, करनी है तो आप अगर इससे अभी जूझ लेंगे, मुझे मालूम है ना कि अब कहां कहां से लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, यात्रा की परेशानी, नए स्थान पर जाने की परेशानी, ये ढेर सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं और ये बड़ी स्वाभाविक भी होती हैं। तो अगर कोई भी ऐसा कारण मिल जाए कि न जाना पड़े तो हमें सूट करेगा, और दिमाग खेल खेल रहा है तो हम सोचेंगे कि यार चलो अभी नहीं जाना पड़ रहा है, फरवरी की है, फरवरी में कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। चलिए आपने फरवरी पर टाल दिया, लेकिन क्या आपका काम बन गया? या तो आप अपने ऑब्जेक्टिव से विड्रॉ कर लीजिए कि नहीं हम इसको करेंगे ही नहीं, और अगर वो ऑब्जेक्टिव मौजूद है और आप समझते हैं कि ये मेरे लिए जरूरी है तो उसको तो आपका आपको उसका मुकाबला तो करना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप अक्टूबर में कर लें या फरवरी में कर लें या उसके बाद जब कभी होगा तो कर लें, जो भी होगा जहां का भी होगा। मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि आप लोग सीधे सीधे इस इंसिडेंट से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए बात कह रहा हूं। और हम ये भूल जाते हैं कि यदि हमने अभी किसी भी वजह से किसी भी अपने संघर्ष को या संकट को टाला, टाला खत्म कर दिया, बात अलग है, आपने ड्रॉप कर दिया कि जाना ही नहीं है, सिविल सर्विस देना ही नहीं है, फलाना है, तब तो ठीक है। लेकिन यदि आपने टाला कि बाद में करेंगे, तो दोस्तों हम भूल जाते हैं कि बाद में यही संघर्ष बड़ा होगा, कठिन होगा और गहरा होगा, यही चीज मुझ थोड़ी सी और मुश्किल हो जाएगी, हम कहीं ना कहीं थोड़े से चूक जाएंगे, हमें देर हो जाएगी, और हो सकता है कि थोड़ी सी देरी जिंदगी भर की एक बहुत बड़ी देरी बन जाए। तो मित्रों ये सिम्टम होता है, एक लक्षण होते हैं दिमागी कमजोरी के। सरदार भगत सिंह जैसे लोगों के पास वो सिम्टम्स नहीं थे। उन्होंने अगर एक बार फैसला कर लिया कि मुझे देश के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर देना है, मेरे ये सिद्धांत हैं और अपने मैं इन सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करूंगा, तो फिर कोई उनको हिला नहीं सकता। यही गांधी जी के साथ थे और भी हमारे बहुत से नेताओं के साथ थे। मैं तो केवल एक दो जो सर्वोत्तम उदाहरण है जिनके बारे में आप सब जानते भी होंगे क्योंकि आप सब हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री आपको पढ़नी ही पड़ती है, इसलिए मैं ये दो व्यक्तित्व के नाम लेकर के आपसे चर्चा कर रहा हूं कि हमने एक फैसला कर लिया है कि देश को समाजवाद चाहिए, देश को आजादी चाहिए, और इस आजादी के लिए मैंने ये रास्ता चुना है। और आप देखिए कि दोनों के रास्ते, मतलब सरदार भगत सिंह का रास्ता अहिंसा का रास्ता नहीं है और जो गांधी जी का रास्ता है वो अहिंसा का रास्ता है, दोनों का मकसद एक ही है। अब आप देखिए कि कैसे अलग अलग रास्ते हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है, दोनों देश की आजादी चाहते हैं और उसी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर भी करने को तैयार हैं लेकिन अलग अलग रास्ते से, और दोनों को अपने रास्तों पर पूरा भरोसा है। ऐसा नहीं है कि डाउट हो रहा है। गांधी जी को लगता है कि नहीं, मैं अहिंसा के रास्ते से आजादी हासिल करूंगा, और सरदार भगत सिंह और उनके साथियों को लगता है कि नहीं, हम इन अंग्रेजों से लड़कर आजादी हासिल करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। आजादी मिली, किस वजह से मिली, कोई एक कारण नहीं होते हैं, सबने मिलकर देश को आजादी दिलाई। तो मित्रों, जो रियल स्ट्रेंथ होती है, याद रखिए कि वो हमारे दिमाग में होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे दिमाग में स्ट्रेंथ आती है, जिसकी चर्चा मित्रों मैं आप लोगों से बार बार करता हूं, तब हमारे दिमाग की जो ग्रेविटेशन, दिमाग का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो उसके आकर्षण करने की शक्ति है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये होता है, ये मनोविज्ञान है, और आपने देखा है, आपने महसूस भी किया होगा, और आपके ये अनुभव भी होंगे कि जब हमारे अस्तित्व पर संकट आके खड़ा हो जाता है, तब हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी एनर्जी है, वो सबसे अधिक, सबसे उच्चतम शिखर के बिंदु पर काम करती है और हम उससे निकलकर बाहर आ जाते हैं। मित्रों, अभी मेरी पत्नी एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के इंटरव्यू का एक हिस्सा सुनाया, एक छोटा सा अंश सुनाया, कि जब अमिताभ बच्चन अपने स्कूल में पढ़ रहे थे, नैनीताल में पढ़ रहे थे, तो उस समय उनका एक मित्र भी था, तो उस मित्र के उनका उनके जो फ्रेंड्स थे उसके हार्ट में एक छोटा सा छेद भी था, या कह लीजिए कि जो भी इस तरह की हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने उसको मेहनत करने के लिए मना किया था कि नहीं, तुम ज्यादा दौड़ भाग नहीं करोगे, ज्यादा मेहनत वाला खेल नहीं खेलोगे, तो इस तरह का था। तो बोले कि एक बार जब वो अपने अमिताभ बच्चन अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे थे, तो देखा कि वहां एक भीड़ सी है, तो अमिताभ बच्चन और उनके दोस्त भी पहुंच गए, तो भीड़ में क्या था कि एक कोई पूंछ सी निकली हुई थी, तो सब उसको देख रहे थे, और पता लगा कि वो पूंछ शेर की पूंछ थी, या बाघ होगा या फिर तेंदुआ होगा, अब जी थोड़ा सा मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, जो भी थी किसी तरह से वो निकल गया। अब पहले तो पूंछ थी, अब वो सामने आकर के खड़ा हो गया। और मित्रों, अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि इसके बाद मेरा वो दोस्त इतनी तेजी से भागा, इतनी तेजी से भागा कि उतनी तेजी से तो मैं भी नहीं भाग सका। और उन्होंने कहा कि उस दिन से रियलाइज हो गया मेरे दिमाग में, ये मुझे भरोसा हो गया कि ताकत कहां होती है। जब ये जिसके दिल में प्रॉब्लम है, कह लीजिए जो भी बीमारी है, जिसको डॉक्टर ने मना कर रखा है, वो मुझसे भी स्पीड से भाग रहा है। तो मित्रों, यही होता है कि जब हमारे अस्तित्व पर संकट आता है तो हमारी जो शक्ति है वो जागृत हो जाती है। तो मित्रों, अब इस इशू पर मैं ये कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि प्लीज आप सब अपने दिमाग के साथ थोड़ा सा क्रूर होइए, थोड़ा सा निर्दयी होइए, थोड़ा सा निर्मम होइए, थोड़ा सा कठोर होइए, और उसकी बातों के हिसाब से अपनी जिंदगी को मत ढालिए, अपनी जरूरत के हिसाब से अपने दिमाग को ढालिए। आप देखिए कि कैसे आपके दिमाग में, आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं होंगे, और कैसे सफलताएं आपको नहीं मिलेंगी। दोस्तों, सफलता तो प्रतीक्षा करती रहती है, इंतजार करती रहती है कि कोई आए और मुझे स्वीकार करें। हजारों लाखों तरह की सफलताएं धरती की पता नहीं कहां कहां बिखरी पड़ी हुई सालों से इंतजार कर रही हैं कि आओ और मुझे ग्रहण करो, स्वीकार करो। मित्रों, बस सवाल यह है कि क्या हम अपने को उसके योग्य बना पाते हैं। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। दोस्तों, कल के AIR न्यूज की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि सच पूछे तो कोई भी ऐसी न्यूज नहीं थी जिसकी चर्चा मैं आपसे सिविल सर्विस परीक्षा के बारे में कर सकूं, कि ये आपको ध्यान देना चाहिए या उस टॉपिक को लेकर के हम डिटेल्स में जा सके। लेकिन एक जो छोटी सी बात थी वो ये थी सौर ऊर्जा परियोजना की, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी सी चर्चा की। चूंकि ये प्रोग्राम दूसरा था, प्रोग्राम सोलर एनर्जी का नहीं था, लेकिन उन्होंने वहां सोलर एनर्जी की बात कही। बस कुल मिलाकर के कल की न्यूज में इतनी ही है मित्रों। तो जब हम न्यूज सुनते हैं और इस तरीके से जब हमको कोई टॉपिक मिल जाता है, जैसे एक सोलर एनर्जी का टॉपिक हमें मिल गया, तो एक मुझे लगता है कि एक अच्छा समय है जब हम सोलर एनर्जी के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा है या जो कुछ भी हमने मान लीजिए पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, तो उनको एक बार पलट लें और देख लें। मित्रों ये इसलिए भी जरूरी है मुझे लगता है क्योंकि ये टॉपिक आने वाले समय में, चाहे वो दिसंबर का एग्जाम हो या उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हो या प्री का ही क्यों ना हो या इंटरव्यू ही क्यों ना हो, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट को आप कैसे मेजर करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये बहुत सरल है, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बशर्ते कि आप थोड़े से ओपन माइंड से सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। क्योंकि हम तो जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो भागम भाग में कर रहे हैं, भागम भाग में कर रहे हैं। अच्छा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, आज तो प्रेस की क्लिपिंग्स भी बची हुई हैं, आज तो ऑडियो भी बचा हुआ है, अभी तो न्यूज भी पढ़ना है, फिर ये टॉपिक भी कंप्लीट करना है, फिर वहां क्लास में भी जाना है, फिर ये करना है। तो हम सारी चीजों को भागम भाग के पैटर्न पर निभा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं कि भैया चलो इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, उसके यहां भी हुआ है, उसके यहां भी हुआ है, लेकिन इत्मीनान से बैठकर कहीं हम बात नहीं कर पा रहे हैं। ये सिविल सर्विस की तैयारी का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा संकट है। इस संकट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए मित्रों। कभी तो इत्मीनान के साथ, प्यार के साथ, ध्यान से सिविल सर्विस के मेंस के पेपर उठा करके पढ़िए तो, और इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि सिलसिलेवार बड़ी तेजी के साथ जब आप 20 क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे ना, तो दिमाग से सारी चीजें दिमाग के ऊपर से निकल जाएंगी और आपको लगेगा कि बाप रे ये तो बहुत कठिन है, और इसको जानने के लिए, इसके उत्तर लिखने के लिए तो हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एकदम तुरंत दिमाग में धारणा बनेगी। लेकिन एक बार थोड़ा सा उसके साथ प्यार करके देखिए, है ना, आपकी उम्र तो है ऐसी, किताब सिविल सर्विस के जो अनसॉल्व पेपर हैं उनके साथ प्यार करके देखिए, प्रेम से उनसे पढ़िए, सहला कर पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये जो मुझे इतनी कठिन चीजें लग रही थी ये तो बड़ी प्यारी चीजें हैं, बड़ी सरल चीजें हैं। और तब आपको पता लग जाएगा कि न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है और अखबारों में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बिल्कुल साइंस है, ये चीजों को समझने का एक तरीका है, और तैयारी करने का भी मैं समझता हूं कि एक बेस्ट पैटर्न भी है। जैसे अगर आपने न्यूज में सुने सौर ऊर्जा, कोई बात नहीं, चलिए अब हम सौर ऊर्जा पर सोचते हैं। पहले तो आप सोचिए, सीधे आप मत जाइए कि आपको क्या मालूम है, आपको क्या मालूम है कि भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के लिए कितना टारगेट रखा है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप उठा रही है। अगर स्टेप उठा रही है तो ठीक है, फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसके बारे में भारत किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको मालूम है कि अभी भी जब भारत जो ग्रीन एनर्जी है उसके मामले में भारत बहुत आगे है, मतलब लगातार हर मंच पर वो पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है, फिर पेरिस सम्मेलन है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से सौर ऊर्जा के बहाने ग्रीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के बहाने क्लाइमेट चेंजेस, नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल सिनेरियो तक आपके दिमाग में कौन जाएगा और इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। यही मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी की सबसे बड़ी बात भी होगी, क्योंकि मित्रों आप इस संकट से जूझेंगे, आप में से कुछ ही लोग मेंस तक पहुंचे होंगे और मेंस तक पहुंचने का आप लोगों को अनुभव भी होगा, ज्यादा लोग मेंस तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो सब भी मेंस तक पहुंचे। जब आप एक बार मेंस में बैठेंगे ना तब आपको सही पता लगेगा कि इससे जुड़े हुए संकट क्या हैं। इससे जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा संकट है वो ये नहीं है कि आप क्या लिखें, ये संकट नहीं है, आपको लगता है कि आप क्या लिखें ये संकट है। सबसे बड़ा संकट ये है कि उस समय जो पूछा गया है उससे रिलेटेड कौन कौन सी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं। संकट सबसे बड़ा कंटेंट के दिमाग में आने का है, और उस समय जो बहुत ही सामान्य से कंटेंट है वो तो आपके दिमाग में आ जाते हैं, बड़े जनरल नेचर के जो कंटेंट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो स्पेसिफिक नेचर के कंटेंट होने चाहिए वो दिमाग में नहीं आते। अब आप क्या करेंगे, लिखना तो है, आपको ये लग भी रहा है कि मैं इस पर लिख सकता हूं और ज्यादा सोचने का समय भी नहीं है, तब फिर आप क्या करेंगे। ये कि जो कंटेंट जो बहुत ही जनरल नेचर के हैं, जो टॉपिक के हिसाब से तो क्वेश्चन से को सूट कर रहे हैं, जो आए हैं आपके दिमाग में कंटेंट, वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन वो स्पेसिफिक कंटेंट आपके दिमाग में नहीं है जिस तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है। और बस फिर हमको जो आ रहा है वो हम लिखते हैं, क्योंकि समय का दबाव तो हमारे दिमाग पर है और पता लगता है दोस्तों कि हम फांसी पर चले जाते हैं, क्योंकि जो चीज लिखनी चाहिए थी वो हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो मित्रों, इसके लिए आप क्या करेंगे, इस समस्या का हल क्या है? मुझे लगता है कि समस्या का हल यही है कि हम अपने दिमाग को ट्रेंड करें, इसको प्रशिक्षित करें, ताकि उसके दिमाग में जल्दी से जल्दी चीजें आने लगे, जो हमारी जरूरत है उसकी सप्लाई हमारा दिमाग करे। और दिमाग ऐसा करता भी है, दिमाग की विशेषता होती है, लेकिन वो करेगा तभी दोस्तों जब अभी आपको जो मैंने सौर ऊर्जा के माध्यम से एक जो छोटा सा पैटर्न बताया है, इसको आप लोग अपनाएं, आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद ही आपकी चीजें बदलने लगेंगी। दोस्तों, आज AIR न्यूज में कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक यही खबर थी। इसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आज हम न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स और थोड़ी सी और दूसरे तरह की बातें करें, उससे थोड़ा सा ब्रेक भी होगा जो हमारा एक ऑडियो का जो पैटर्न रहा है, और आप एक्सपेंड भी करेंगे चीजों के जो दूसरे क्षेत्र हैं, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जो दूसरी और चीजों की जरूरत होती है उनके बारे में भी आप जान सकेंगे। फ्रेंड्स, दैनिक जागरण में मेरा एक लेख छपा है और मुझे पंकज मिश्रा दिल्ली के हैं, उन्होंने इस बात की खबर भी दी, धन्यवाद पंकज इसके लिए। ये मैं आज आपको नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूं। इस लेख को आप थोड़ा सा अलग एंगल से देखिएगा, है ना, ये मैं सिविल सर्विस के लिहाज से बात कर रहा हूं, कंटेंट पर मत जाइए। इस लेख में मैंने कोशिश की है कि सितंबर के महीने में जो चार घटनाएं हुई हैं उसमें से कुछ बहुत प्रोमिनेंट रही हैं और कुछ बहुत उतनी प्रोमिनेंट नहीं रही हैं, लेकिन अखबारों में उसे जगह मिली थी। इन चार घटनाओं को लेकर के और मैंने एक एनालिसिस की है, और एनालिसिस इस एंगल से की है कि अब हमारी जो सामाजिक चेतना है, हमारा जो सोशल कॉन्शियसनेस है या सामूहिक चेतना है, वो शो कर रही है, ये जो चार घटनाएं हैं ये इस बात को बता रही है कि अब हमारी जो सामाजिक चेतना है वो अधिक तार्किक हो गई है, लॉजिकल हो गई है, और वो अधिक प्रैक्टिकल भी होती जा रही है। केवल मैंने इसके आधार पर, इसको बेस बना करके, चार घटनाएं उठा करके इस लेख को लिखा है। मैं चाहूंगा कि आप सब इस लेख को इस लिहाज से पढ़ें, इसमें आपको एक सोशियोलॉजिकल स्टडी दिखाई देगी और एक साइकोलॉजिकल पकड़ भी दिखाई देगी। अब सवाल यह होता है कि जो हम जनरल नॉलेज के अंतर्गत जो करेंट अफेयर्स होते हैं, देखिए आपको कैसे मदद करेगी, जो करेंट अफेयर्स होते हैं, इन करेंट अफेयर्स का इस्तेमाल हम अपने मेंस के एग्जामिनेशन में कैसे करें, यह आपके सामने एक चुनौती होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि आप ऑप्शनल पेपर उठाकर, आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देख लीजिए, तो उसमें जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर का संबंध किसी न किसी करंट अफेयर से होता है। साल डेढ़ साल के बीच जो घटी हुई घटनाएं होती हैं उन्हीं में से वो प्रश्न उठाते हैं। अब सवाल यह कि घटना एक घटी थी और उसको बेस बनाकर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ दिया। अब घटना एक है, अब आपको लगता है कि इस एक घटना को बेस बना करके मैं कैसे इसका उत्तर दूं? दोस्तों, अपने दिमाग को ब्रॉड रखिए, ओपन रखिए, क्योंकि उसी घटना, उसी तरह की घटना से संबंधित दूसरी और भी कई घटनाएं घटी हैं। अब यह बात है कि बहुत स्पष्ट रूप से वो चीजें नहीं थी, लेकिन अगर हमारा दिमाग खुला है, हम सही मायने में बहुत ध्यान दे करके कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर, करंट अफेयर्स पर ध्यान बनाए हुए हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप देखेंगे कि घटना भले ही एक हो लेकिन उससे रिलेटेड और भी कई घटनाएं घटी हैं, और जैसे ही आपको दूसरी घटनाओं के बारे में पता लगेगा, आपका दिमाग आपको प्रोवाइड करेगा, वैसे ही आप देखेंगे कि फटाफट आपके दिमाग में पॉइंट इमर्ज होने लगेंगे। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप सभी इस आर्टिकल को कम से कम इस लिहाज से देखें, पढ़ें और इस पर थोड़ा सा विचार भी करें, आपको मुझे लगता है कि मजा आएगा और आपको शायद इस बात की थोड़ी सी झलक भी मिल सकेगी कि कैसे हम घटनाओं का इस्तेमाल अपने उत्तर लिखने में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जो समय बचा है उसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, और वो पर्टिकुलर टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है उसके ऊपर। और ये मैं क्यों करना चाह रहा हूं, इसका रीजन है, और रीजन ये है कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत खूबसूरत एडिटोरियल कमेंट लिखा है, वो है टेरर अलर्ट के नाम से, बहुत खूबसूरत एडिटोरियल कमेंट है। और इस एडिटोरियल कमेंट को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसके सेकेंड पैरा, पूरे के पूरे सेकेंड पैरा को मैंने अंडरलाइन किया है फ्रेंड्स। और मजेदार बात यह है कि इस सेकेंड पैरा में जो मैंने अंडरलाइन किया है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सब कुछ आ गया है कि भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या जरूरत है। और इसके बाद फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा में तो ये दिया है, जो इसका फर्स्ट पैरा होगा, इसका सेकेंड पैरा है मतलब आपके एडिटोरियल कमेंट का। और उसके बाद का जो पैरा है, फर्स्ट पैरा में तो उन्होंने मैकेनिज्म की बात कही है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म की बात कही है। सेकेंड पैरा में फिर उन्होंने सोशल, कल्चरल, इकोनॉमी, इनकी बात कही है, क्योंकि जब हम आंतरिक सुरक्षा को केवल पुलिस के दम पर, सेना के दम पर कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें उससे जुड़े हुए जो सांस्कृतिक पक्ष होते हैं, जो आंतरिक, जो आपके आर्थिक पक्ष होते हैं, जो और भी दूसरे पक्ष होते हैं, उन पर भी ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा एडिटोरियल कमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आंतरिक सुरक्षा के बारे में आपके 50 पेज के बराबर तैयारी करा देता है आपको। अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं, वो ये कि आप पिछले साल का पेपर थर्ड उठा करके देखिए, जो जनरल स्टडीज का है, उसमें सुरक्षा के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 20 में 5 क्वेश्चंस सुरक्षा के ऊपर है। मैं एक दो प्रश्न आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, और इसके बाद फिर इस प्रश्न का उत्तर देने में ये छोटा सा एडिटोरियल कमेंट आपकी कितनी मदद कर सकता है, इस पर विचार कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता कि आप सीधे सीधे जो मैं आपको ऑडियो प्रोवाइड कर रहा हूं या आपको जो प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड करता हूं, आप उनको पढ़ें और अपना, अपने दायित्व से मुक्त हो जाएं, उससे कुछ बात नहीं बनेगी, उसको पचाना पड़ेगा। अगर हम पढ़ते हैं और उस पर विचार नहीं करते हैं, उसको अपने दिमाग में रखते नहीं हैं, और समय समय पर हम उसे रिवाइज नहीं करते, तो आप उसी तरह से मान लीजिए कि जैसे हमने खाना खाया और 10-15 मिनट के बाद उल्टी हुई और सारा खाना ज्यों का त्यों बाहर आ गया, वो खाना हमारे शरीर में लगा नहीं, लगभग लगभग वही स्थिति होती है। और खासकर सिविल सर्विस में तो पचाना बहुत ही जरूरी है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पचाएं या ना पचाएं वहां चल जाता है, यहां नहीं चलता। मित्रों, मैं आपको 2014 के थर्ड का, जो थर्ड पेपर है जनरल स्टडीज का, उसके दो प्रश्न केवल पढ़ रहा हूं। पहला प्रश्न है, बहुधार्मिक बहुजातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरापद नहीं है, ऐसे वातावरण के प्रतिकार के लिए अपनाए जाने वाली रणनीतियों के साथ विवेचना कीजिए। इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं, द डाइवर्स नेचर ऑफ इंडिया एज ए मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी इज नॉट इम्यून टू द इंपैक्ट ऑफ रेडिकलिज्म विच इज सीन इन हर नेबरहुड, डिस्कस अलोंग विद स्ट्रेटजी टू बी अडॉप्टेड टू काउंटर दिस एनवायरमेंट। यह है छोटा सा और बड़ा प्यारा सा है प्रश्न, वैसे देखिए तो लगेगा कि बाप रे हम क्या करें, कैसे करें। अब मित्रों, मैं छोटा सा आपको एक हिंट देता हूं, अभी आप देख रहे हैं कि नेपाल में जब कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया गया है, तो नेपाल में एक तरह से अव्यवस्था की स्थिति फैली हुई है। आज के न्यूज में भी वहां के जो रंजीत राय हैं, मेरे बड़े अच्छे परिचित रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति भवन में साथ ही थे, उस समय वो प्रेस सेक्रेटरी हुआ करते हैं, रंजीत राय इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, उनका स्टेटमेंट भी आया है ना। तो नेपाल में थोड़ी सी अभी गड़बड़ी सी चल रही है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का एक वर्ग विरोध कर रहा है, उसमें भारत भी चिंतित है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसका कुछ संबंध इस प्रश्न से है, इस घटना का कुछ संबंध इस प्रश्न से है, या जब अफगानिस्तान में कोई घटना होती है या जब और पड़ोसी हमारे देशों में कुछ घटना होती है तो भारत क्यों चिंतित हो जाता है, भारत क्यों डेमोक्रेसी को महत्व देता है, भारत क्यों चाहता है कि पड़ोसी देशों में भी शांति हो, भारत अब आप जब इन चीजों को ध्यान इसके साथ ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रश्न बहुत सरल हो जाएगा। और इस प्रश्न को का उत्तर देने के लिए अब मैंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल कमेंट की बात कही है उसको पढ़िए तो देखिए कि आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते। आपको पॉइंट्स मिलेंगे। एक मैं और प्रश्न आपके लिए अब प्रस्तुत कर रहा हूं, वो भी इंटरनल सिक्योरिटी से है और ये बात अलग है कि उस इंटरनल सिक्योरिटी का जो आधार है वो एक्सटर्नल है, राइट। भारत की सुरक्षा को गैर कानूनी सीमा पार प्रवसन किस प्रकार एक खतरा प्रस्तुत करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवसन को रोकने की रणनीतियों की विवेचना कीजिए, रणनीतियों का वर्णन कीजिए। हाउ डज इलीगल ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन इमिग्रेशन पॉज ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी? डिस्कस द स्ट्रेटजी टू कर्ब दिस ब्रिंगिंग आउट द फैक्टर्स विच गिव्स इंपेटस टू सच माइग्रेशन। ये देखिए, अब आप देखें कि फिर से आपको इस टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे तो ये जो टेरर अलर्ट जो दिया हुआ है इसका शीर्षक ही है इस एडिटोरियल कमेंट का, जो आईएस का जो मामला चल रहा है और आपने देखा कि भारत में भी इसके थोड़ा सा नेटवर्क फैल रहा है, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, तो भारत इसके लिए क्या करे, कैसे अलर्ट हो, इसको लेकर के दिया है। अब यहां दिया हुआ है गैर कानूनी सीमा पार प्रवसन, जो माइग्रेट होकर के लोग आ रहे हैं वो भी हमारे सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, अब उसको लेकर के यहां लिखा हुआ है। तो यहां आपको फिर से एक आईएस को लेकर के, आईएस जो है ना, आईएस जो इस्लामिक स्टेट्स की जो बात करते हैं वो भारत के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि दिसंबर के एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाए या उससे आगे के एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाए। अब एक और मैं आपको पढ़ करके इस बात को खत्म करता हूं क्योंकि वक्त भी नहीं है, कि चीन और पाकिस्तान ने एक आर्थिक गलियारे के विकास के लिए समझौता किया है, यह भारत की सुरक्षा के लिए क्या खतरा प्रस्तुत करता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कितना प्यारा सा छोटा सा सवाल है, तीन खंड हैं। भारत की सुरक्षा के लिए क्या खतरा प्रस्तुत करता है, पहला, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये दो भागों में बढ़ जाएगा, एक जो है खतरा है खतरा नहीं है क्या स्टेप से थोड़ा सा लेकर के करेंगे तो ये कई भागों में बढ़ जाएगा। अब 200 शब्दों में लिखना, चाइना एंड पाकिस्तान हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप सब जानते हैं कि किस तरह से भारत चाइना और पाकिस्तान ने समझौता किया जिसको लेकर के भारत चिंतित भी है। व्हाट थ्रेट्स डज दिस पॉज फॉर इंडियाज सिक्योरिटी क्रिटिकली एग्जामिन। तो मित्रों, जब आप प्रश्न इसमें पढ़ेंगे तो आपको थोड़े से अटपटे से लगेंगे, लेकिन जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इनके साथ थोड़ी सी मोहब्बत करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि यही चीज आपको बहुत प्यारी लगने लगेंगी। और जैसे ही हमारे दिमाग को कोई चीज प्यारी लगने लगती है, वो हमें अपनी लगने लगती है, आसान लगने लगती है, और फिर हम बड़े आराम से ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे भी डालते हैं। तो मित्रों, आज के न्यूज़पेपर्स के बारे में इतना ही। अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर। सबसे पहले दोस्तों, एक मेरे पास मेल है जय कुमार गुप्ता का है, जो जबलपुर से हैं और ये अभी अक्टूबर की क्लास में आ रहे हैं। जय कुमार ने लिखा है कि जो भी जबलपुर आसपास के एरिया से आ रहे हों क्लास के लिए वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। जय कुमार गुप्ता का मोबाइल नंबर है दोस्तों 9479464712। दोस्तों, अब मैं सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं। और इसी में से कुछ के नाम हैं, पंकज मिश्रा दिल्ली से, अंकित राज बेगूसराय से, आनंद कुमार नई दिल्ली से, प्रजापति हर्ष अहमदाबाद से, सुरेंद्र सिंह गैरसैंण चमोली उत्तराखंड से, विवेक कुमार मालवी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, प्रियंका रावत गाजियाबाद से, अभिषेक झा दिल्ली से, अभय मिश्रा और राकेश कुमार बंगलुरु से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल 2 अक्टूबर है, नेशनल हॉलीडे है, गजटेड हॉलीडे भी है, परसों सैटरडे है और संडे को छुट्टी ही होती है। आप समझ सकते हैं कि मैं ये जानकारी आपको क्यों दे रहा हूं। अब आप लोगों से 3 दिन बाद मुलाकात होगी, सोमवार को हम सब फिर मिलेंगे, आपस में बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, उपयोगी बातें करेंगे, और तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, साथ ही ये शुभकामनाएं भी स्वीकार करें कि ये जो 3 दिन हैं आपके बड़े खुशनुमा हों, बड़े उपयोगी हों और बड़े ऊर्जावान हों। दोस्तों, नमस्कार।